ओम शांति। अपने मस्तक से आत्म ज्योति का प्रकाश फैलाने वाले आदरणीय राजयोगी भ्राता आत्म प्रकाश भाई जी हम सबके बीच में है। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत सत्कार सम्मान। भ्राता जी संतरा नगरी नागपुर से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1972 में आपने यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया और 1973 में नागपुर यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ प्राप्त की और तब से ही यह जुनून सवार हो गया दिलो दिमाग में। अलौकिक पढ़ाई में भी गोल्ड मेडल हासिल करना है और इसलिए ज्ञान की गहराइयों में उतरने लगे, योग की अनुभूतियां करने लगे और 1976 में मधुबन में आए, आकर के अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। तब से लेकर आज दिन तक आप यहाँ रहकर सभी कैंपसेस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, देश विदेश में भ्रमण करते हैं, 90 से भी अधिक देशों का भ्रमण करके बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाया है, ज्ञान की गहराई ब्राह्मणों को बताई है और इसके साथ साथ आपके आर्टिकल्स पत्रिकाओं में छपते हैं, आपके इंटरव्यूज रेडियो में आते हैं, आपके लेक्चर्स टीवी में ब्रॉडकास्ट होते हैं, टेलीकास्ट होते हैं और साथ साथ जो हमारा यूथ विंग है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं और इन सब से बढ़कर तीनों कैंपस में जो हमारा टोली किचन है वो आपके निर्देशन में चलता है, जहाँ से हम सभी को टोलियाँ मिलती हैं और टोली खाके ब्राह्मण तृप्त होते हैं, है ना? तो टोली के साथ साथ आज हम उनकी बोली से भी अपने आप को तृप्त करेंगे और आज की बोली रहेगी, एक पाप से सर्व संबंधों के रस की अनुभूति कैसे करें। तो सुनते हैं भ्राता जी से, आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। एक पाप से सर्व संबंधों की अनुभूति करना। सारे कल्प में हम सभी ने आत्माओं के साथ विभिन्न संबंध निभाए, लेकिन संगम युग में हमें बहुत सुंदर गोल्डन चांस मिला है, डायरेक्ट ईश्वर के साथ भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करने का। सारे कल्प में एक ही बार हमें ये गोल्डन चांस मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति करने की क्या आवश्यकता है, क्यों करें, क्या उसके पीछे कारण है। पहला कारण, इस साकारी दुनिया में अगर कोई संबंध हमें अपने तरफ खींचता है, आकर्षित करता है, तो उस संबंध से न्यारा होके किनारा करके एक बाबा के साथ वो संबंध अनुभव करना बहुत जरूरी है। यहां से न्यारा और बाबा का प्यारा। दूसरा कारण ये है कि सारे कल्प में 84 जन्मों में हमें अलग अलग रोल बजाना होगा। आधे जन्म हमारे मेल के और आधे फीमेल के होते हैं, ये तो बाबा ने मुरली में बता दिया है। लेकिन जो भी संबंध हमें बजाने के लिए मिले वो हम अच्छी तरह से बजा सकें, वो संस्कार हमें अभी भरना है। परम धाम रूपी घर वापस जाने के पहले वो संस्कार आत्मा में भरना है, ताकि जो भी हमें रोल मिलता रहे वो हम बहुत अच्छी तरह से निभाते रहे, बजाते रहे। ठीक है। और तीसरी बात है, सर्व संबंधों की अनुभूति कराने की क्षमता केवल परमात्मा में ही है। इसलिए उनका गायन है पा रस नाथ। क्या? पारसनाथ। दुनिया में लोग कहते हैं लोहे को पारस टच करते हैं तो क्या होता है? सोना बन जाता है। एक लोभी मारवाड़ी सेठ कहते हैं मुझे पारस मिल जाए ना तो मजा आएगा, अभी कितना सोना बनाए। पारस मिल जाए तो सोना जितना चाहे मैं बना सकूंगा। बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा उसको पारस। पारस इन सभी को मिला है जो यहां बैठे हैं भाई, ताली तो बजाओ जरा। बाबा जो पारसनाथ हैं, जो आयरन एजेड आत्मा हैं, उनको टच करते हैं, उनकी याद में रहते हैं तो आत्मा गोल्डन एजेड बनती है। तो हमें वो पारस असली मिला है। कितने भाग्यशाली हैं हम। सर्व रसों का भंडार, सर्व प्राप्तियों का भंडार मिला है, सर्व संबंधों की स्क्रीन हमें मिला है। हमने द्वापर युग से अपनी मन और बुद्धि को बहुत भटकाया, बहुत भटकाया। छोटी मोटी प्राप्ति करने के लिए मन बुद्धि को बहुत भटकाया। विदेशों में अगर आप जाएंगे तो वहां बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर होते हैं, छोटे से लेकर बड़ी चीज एक ही जगह मिलती है और इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। भारत में 10 चीजें खरीदनी होती है तो 10 दुकानों पर धक्का खाना पड़ता है। कितना टाइम और कितनी एनर्जी हमारी वेस्ट होती है। अभी मेरा शॉपिंग सेंटर कौन है? कौन है? बस बाबा जो मुझे चाहिए उसी ठिकाने पर ठाकुर बनकर मन बुद्धि को लगाना है और जो मुझे चाहिए बस पाते रहना है। क्योंकि मन बुद्धि को हमने बहुत भटकाया है ना। अभी मन बुद्धि पर रहम करना है और एक ही ठिकाने पर एक ही बाबा से बुद्धि योग जोड़कर सर्व प्राप्तियां हमें बाबा से अनुभव करना है ना। अगर कोई भी संबंध हमारा कम होगा तो वो अंत में हमें धोखा दे सकता है। अंत में माया हमें वही मार करेगी, फेल करेगी। कहीं कहते हैं बस बिंदु समझकर बिंदु बाप को याद करना है, जरूरी क्या है सर्व संबंध अनुभव करने की। अब बिंदु बाप को बिंदु समझकर हमें याद करना है, वही यथार्थ योग है। लेकिन क्या होता है, दो चार घंटे के बाद में बोर होता है, क्या बिंदु 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 हा? कड़ी खिचड़ी आपको बहुत प्यारी लगती है, लेकिन कहते डेली वही कड़ी खिचड़ी, क्या थोड़ा बदली करो ना मेनू, है ना। तो मनुष्य का ये नेचर है, वो वैरायटी चाहता है। इसलिए सारे दिन भर में सवेरे से लेकर रात्रि तक हमें विभिन्न संबंधों के रूप में बाबा को याद करना है, बाबा को फ्री नहीं छोड़ना है। बाबा कहते 24 घंटे में आपके सेवा में हाजिर हूं, यूज मी और यू कैन लूज मी, दैट्स अप टू यू। भगवान सामने से 24 घंटे हमें कंपनी देने के लिए तैयार है, ये मौका छोड़ना चाहिए हा? क्योंकि ये मौका बार बार मिलता ही नहीं है, एक ही बार मिलता है सारे कल्प में। होशियार विद्यार्थी को, कौन से विद्यार्थी को होशियार विद्यार्थी कहते हैं भाई, हाँ जी, इतने सारे विद्यार्थी है ये होशियार है, उसकी निशानी क्या होती है बोला ना। होशियार जो होश में रहता है, अलर्ट रहता है, समय का इशारा क्या है और बाबा का इशारा क्या है और मुझे क्या करना है, और वही होशियार विद्यार्थी चमकता है यूनिवर्सिटी में। तो अभी समय का इशारा है, योगाभ्यास को बहुत अच्छी तरह से हमें बढ़ाना है, इसलिए वैरायटी रूप से हमें बाबा को याद करते रहना है किसी न किसी तरीके से, ठीक है। तो सारे दिन भर में कितने संबंध अनुभव करना है हमें, बोलो जल्दी बोलो, हाँ जी, सर्व संबंधों का वो तो सागर है, लेकिन हमें कम से कम कितने संबंध अनुभव करना है जी, 5। सारे दिन भर में हमें कम से कम 11 संबंध अनुभव करना है, लिखो। बाबा को फ्री छोड़ना ही नहीं है, अगर फ्री है बैठो यहां, बस मुझे देखते रहो और कुछ नहीं करो, मुझे देखते रहो और मुझे सकाश देते रहो बस, और कुछ नहीं, ये भी तो योग है। तो पहला संबंध अमृत वेले, जैसे आंख खुलती है बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद पहला संबंध अनुभव करना है बाप का, बाबा मेरा परम पिता है। लौकिक बाप से हमारा थोड़ा सा प्यार होता है क्योंकि उससे हमें वर्षा मिलता है, इसलिए थोड़ा सा लगाव जरूर होता है, लेकिन बाबा को बाप के रूप में अनुभव करते हैं तो वही संसार में एक बाप ऐसा है जो निस्वार्थ प्यार करता है, निस्वार्थ बाप का प्यार हमें देता है। लौकिक बाप बच्चे को बहुत प्यार से पालता है लेकिन स्वार्थ उसका होता है, बुढ़ापे में मेरी ये लाठी मिले बने, बाप खटिया पर है, बच्चा उसके बड़े प्यार से सेवा करता है, क्यों, स्वार्थ से करता है, बूढ़ा खिसक जाए तो प्रॉपर्टी मुझे मिले। बिना स्वार्थ इस दुनिया में कोई भी किसी से प्यार नहीं करता है। तो हमें छोटा बच्चा या बच्ची बनकर बाबा की गोदी में बैठना है, खेलना है, बाबा से प्यार करना है, प्यार से बातें करना है, और बाबा का आज्ञाकारी वफादार बच्चा बनकर, बच्ची बनकर बाबा का निस्वार्थ प्यार अनुभव करना है। बाबा का बालक, सो मैं खजानों का मालक हूं, ये संबंध अनुभव करने से खजानों की स्मृति रहती है और स्मृति रहने से उन खजानों को हम यूज करते रहते हैं और यूज करते रहने से वो खजाने वृद्धि को पाते हैं। ठीक है ना? तो निस्वार्थ प्यार हमें बाबा से अनुभव करना है तो लौकिक बाप से हमारा रिंचक मात्र भी लगाव नहीं होगा। ठीक है? दूसरा संबंध शिक्षक का। हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार भगवान इस धरती पर आकर साकार रूप में हमें सिखाएंगे पढ़ाएंगे, कभी नहीं सोचा। और वो हमें पढ़ा रहे हैं, और कैसे पढ़ा रहे हैं, बड़े प्यार से पढ़ा रहे। डायमंड हॉल में आप बैठे हैं स्टूडेंट बनकर और बाबा टीचर बनकर मुरली चला रहे, इतने प्यार से और इतनी धीमी गति से चलाते हैं, हम अच्छी तरह से लिखते भी हैं, उसका आनंद भी लेते हैं, रस भी लेते हैं। आजकल के लेक्चरर जो है बड़बड़ 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 भाषण कर दिया, कोई मतलब नहीं, तनख्वाह मिल गया हो गया। ऐसा शिक्षक मुझे सारे क्लब में नहीं मिलने वाला है भाई, ताली तो बजाओ जरा। हर रोज दूर देश से आता है और हर रोज हमें मधुर शिक्षाओं से सजाता है। अमूल्य ज्ञान रत्नों से हमारी बुद्धि रूपी झोली भर देते हैं, जिससे हमारी बुद्धि दिव्य और दूरंदेशी बनती जाती है। तो मेरे टीचर का हाथ मेरे सिर पर सदा रहे, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? हाँ जी, अच्छी तरह से पढ़ना होगा। बोलिए, जो टीचर मुरली में होमवर्क देते हैं वो होमवर्क करके ही मुझे आना है। जो होमवर्क करके आते हैं ऐसे स्टूडेंट के सिर पर टीचर का हाथ, उनका आशीर्वाद उनको हमेशा मिलता रहता है और ऐसे स्टूडेंट चमकते हैं, है ना भाई? बाद में मुरली को बहुत अच्छी तरह से हमें मनन चिंतन करना है और जो टिफिन बुद्धि रूपी टिफिन बॉक्स में सेवा केंद्र पर जाकर भोजन भरते हैं, उस टिफिन बॉक्स में ले जाते हैं सारा दिन भर में, और जब मौका मिलता है उसको हजम करना है मनन चिंतन करके और उसकी शक्ति अनुभव करना। भोजन तो भर दिया टिफिन बॉक्स में, बुद्धि रूपी टिफिन बॉक्स में, उसको खाना भी तो होगा ना, ठीक है ना? तो मनन चिंतन करना हमारी हॉबी हो। बाबा के हर मुरली के हर महावाक्य में बहुत गुह्य राज छिपा हुआ रहता है, उस राज को समझना है तो मनन चिंतन के द्वारा ही वो समझ सकते हैं। ठीक है? तीसरा संबंध सद्गुरु का। जब आप सेवा केंद्र से बाहर जाते हैं, बाबा के रूम में जाना है और सद्गुरु के रूप में बाबा को अनुभव करना है, सद्गुरु की दृष्टि से अनेक शक्तियां हमें लेना है, दृष्टि से अनेक वरदान हमें अच्छी तरह से लेना है, और सद्गुरु का हाथ अपने सिर पर सदा रखना है, अनुभव करना है। जो मेरा सद्गुरु मुझे मंत्र देता है, महामंत्र देता है, उस महामंत्र का अजापा जाप भी मुझे करना है और उसके ही छत्र छाया में सदा चलते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। सतयुग में आपके सिंहासन पर आप छोटी छतरी चाहिए या बड़ी छतरी चाहते हैं, आप बताओ भाई। हाँ जी, केशवत वाले बोलो ना, बड़ी छतरी चाहिए। बापरे बापरे, छोटे से काम नहीं चलेगा, बापरे बड़ी छतरी चाहिए बोलता है। तो जितना लंबे समय तक भगवान की छत्र छाया में जो अनुभव करते हैं उनको बड़ी छतरी सिंहासन पर मिलती है। यहां का हिसाब वहां चलता है। तो सारे दिन भर में हमें बाबा के सतगुरु की छत्र छाया में चलते रहना है, पलते रहना है और उनके छत्र छाया में ही हमेशा अनुभव करते रहेंगे तो माया की धूप कभी भी आपको नहीं लग सकती। बाबा हमें वरदानों के सागर, वरदानों से भरपूर करके हमें वरदानी मूरत बना रहे। जैसे अभी बाबा का सदगुरु के रूप में पाठ चल रहा है, दो घड़ी की दृष्टि से, दो बोल महावाक्य से वो वरदान देते हैं, पालना देते हैं, ऐसा अंत में हमारा पाठ चलने वाला है। मास्टर सदगुरु का, मास्टर गॉड का, जो भी हमारे सामने आएंगे दो घड़ी की दृष्टि के द्वारा, दो मीठे बोल के द्वारा, वरदानी बोल के द्वारा उनको राहत मिलेगी। लेकिन उसके लिए हमें सद्गुरु के पालना के द्वारा अनेक वरदानों से स्वयं को भरपूर करना, ठीक है भाई। चौथा संबंध सखा। वास्तव में त्रिमूर्ति बाप से ये तीन संबंध हमें अच्छी तरह से अनुभव करना है। ये तीन संबंध और पक्के होने के लिए दूसरे संबंधों को अनुभूति करते रहना जरूरी है। बुद्धि इधर उधर जाएगी तो ये तीन संबंध हमारे कमजोर हो सकते हैं। त्रिमूर्ति बाप से ये तीन संबंध मेरे बहुत पक्के हो तो चौथा संबंध है सखा का। भाई खास बच्चे हैं आप या आम बच्चे हैं बताओ भाई। आम की दुनिया में रहते हैं, हर रोज वहां हर साल क्रिसमस से आम आते हैं यहां, ताली तो बजाओ भाई। तो आम बच्चे या खास बच्चे है बताइए। आम बच्चे नहीं है बाप, देखो भाई खास बच्चे कहते रूपा दीदी। खास उल्टा क्या है सखा। जो भगवान को सखा के रूप में अनुभव करते हैं वो खास बच्चे कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये सखा का संबंध ऐसा है जो हमारे दिल में बातें होती है सारी, जहां सखा मिलता है सारी बातें हम बता देते, पूरी उल्टी कर लेते है ना। तो भगवान मेरा सखा है, मेरा दोस्त है, खुदा मेरा दोस्त है। अंतिम समय आपको कोई भी मदद नहीं करेगा, जो आपका दोस्त है वही नंगे पैर भागा भागा के आपको मदद करने के लिए दौड़ आएगा। लेकिन उसके साथ जो मेरी दोस्ती हुई है पवित्रता के प्रॉमिस के आधार पर, उस दोस्ती को मुझे और पक्का करते जाना है, और पक्का करते जाना है, तो ये दोस्ती मेरी और गहराई से बढ़ती जाएगी। उसके साथ बैठना है, उसके साथ खाना है, उसके साथ खेलना है, उसके साथ चलना है, उसके साथ रास रचाना है, जो करना है बाबा कहते मेरे साथ दोस्त के साथ करो। अमेरिका से आपका दोस्त 5 साल के बाद आता है, सारा दिन आप उसके पीछे घूमते रहते हैं, वो आपके पीछे साथ साथ चलता है, आपके साथ में बैठता है, आपको बहुत रिलैक्स होता है, खुशी मिलती है कंपनी से। तो ये दोस्त हमारा कितने साल के बाद आया है भाई? 5000 वर्षों बाद आया, इसको हमने फ्री छोड़ना ही नहीं है ना। नेक्स्ट पांचवा संबंध है बच्चे का। बाबा को हमने बच्चा जरूर बनाना है, कुमार हो कुमारी हो कोई भी होवे, हमने बाबा को बच्चा बनाना है। बाबा को जब तक वारिस नहीं बनाते हैं तब तक बाबा हमें भी सतयुग में वारिस नहीं बनाते हैं। तो बाबा को बच्चा बनाना माना बाबा को वर्षा देना। माताएं हमेशा चाहती है मेरा कृष्ण जैसा बच्चा हो। अब ये कृष्ण से भी सुंदर है और कृष्ण से भी शक्तिशाली, ऐसा बच्चा चाहिए ना भाई। चाहिए क्या नहीं? तो ऐसे बच्चे से हमें बहुत प्यार करना है, क्यों ये बच्चा बहुत लायक बच्चा है, ये बच्चा तो स्मशान तक ले जाके छोड़ देता है, और ये तो सतयुग में घर में भी ले जाता है और सतयुग में भी पहुंचाता है। कितना आज्ञाकारी बच्चा है भाई हमारा, है ना? बजाओ ना ताली अच्छी तरह से, कमाल है। जैसे अनुसया ब्रह्मा विष्णु शंकर को बच्चा मानती थी, उनको बड़े प्यार से नहलाती थी, पिलाती थी, सुलाती थी, खिलाती थी, ऐसे हमें बाबा को बच्चा बनाना है और वर्षा हमें जरूर दे। आजकल के बच्चों को वर्षा नहीं मिलता है ना, वो कहता है बाप को, तुम्हें बाप कहने में शर्म आ रही मुझे, तुमसे मुझे मिला क्या, केवल जन्म दिया तुमने तो मुझे, वर्षा तो मुझे मिला ही नहीं, ऐसे कहते बच्चे आजकल के। तो बाबा को बच्चा बनाना है तो वर्षा जरूर देना है। छठवां संबंध, बाबा मेरी माँ है। माँ का संबंध, माँ की ममता बड़ी निराली होती है। लोग कहते हैं सब कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जिसने मुझे पाला, जिसके कोख में मेरा शरीर की रचना हुई, जिसने कई रातें मेरे लिए नींद नहीं की, हर दुख में उसने सुख अनुभव किया, मैं सब कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे माफ करना, माँ की ममता को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, भूल सकता हूँ। बताओ भाई, 83 जन्मों की माँ को तो छोड़ दिया, अभी 84 जन्म की माँ में फंस गए, कैसे चलेगा काम? इसको भी तो छोड़ना होगा ना, जैसे उनको छोड़ा ऐसे इनको भी छोड़ो। लेकिन उसके लिए हमें बाबा को माँ के रूप में अनुभव जरूर करना होगा। कितनी माँ है आपको, हैं जी? कितनी? 3 माँ है। बोलो भाई लोग कितनी माँ है? रामजी भाई बोलो ना, 3 है दादा, 4, एक बढ़ गई, बताओ। 6 माँ है, 6 लिखो, एक माँ नहीं 6 माँ है। एक माँ जिसने मुझे ये जन्म दिया, लौकिक माँ। दूसरी माँ ब्रह्मा माँ, जिसके मुख से मेरा अलौकिक जन्म हुआ, ब्रह्मा मुख वंशावली में ब्राह्मण हूं, ब्राह्मणी हूं। तीसरी माँ सरस्वती माँ, मम्मा जो अभी भी हमें सूक्ष्म रीति से पालना दे रही है, वो हो गई तीसरी माँ। चौथी माँ ड्रामा रूपी माँ, कोई भी तूफान आता है व्यर्थ संकल्पों का, वो ड्रामा रूपी माँ हमें अच्छी तरह से बचाती है, अपने आंचल में छिपा लेती है ना? चार कितनी हो गए? 4। पांचवी माँ धरती माँ, भारत माँ, जिसके मिट्टी में यह शरीर बना हुआ है, धरती माँ। और पांचवी, छठवी परमात्मा, सबसे बड़ी माँ परमात्मा। और सातवीं ये बेटी है रूपा माँ। कितनी पालना दे रही है बहने, देखो अपना सब कुछ छोड़ के कितना प्यार दे रही है, कितना पालना दे रही है, ये भी तो अलौकिक माँ हो गई ना भाई, अपने लिए सब कुछ छोड़ के सब कुछ करती है, कुछ कमी रखती है? तो इतना प्यार हमें मिलता है 3 बाप का, और इतनी माँ का प्यार हमें मिलता है, कितने लाडले बच्चे हैं हम। देखो भाई, हमारे जैसा भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं। फिर ताली तो बजाओ ना जरा अच्छे तरह से। फिर सातवां संबंध है, बाबा मेरा साजन है, मैं आत्मा उसकी सजनी हूं। क्या है बहने, तो मान लेती सजने के लिए, भाई थोड़ा मैं कैसी सजनी बनूंगी? अहंकार होता है भाइयों को, मैं तो मुखिया हूं परिवार का, मैं सजनी कैसे बनूंगा? अरे भाई, सजनी बने बिना उद्धार नहीं है, बनना ही होगा। तो मैं आत्मा सजनी हूं, बाबा मेरा सलोना साजन है। मैंने अपना दिल तख्त अपने साजन को दिया है, लेकिन साजन कहता है कोई तीसरा बैठ गया तो मैं तुरंत उतर जाऊंगा, मेरी ये कंडीशन है। तीसरे नेत्र में मैं और बाबा, बाबा कहते मंजूर है, कोई तीसरा बैठ गया तो ये तीसरा नेत्र काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए वो मेरा सलोना साजन इतना प्यारा है, हर रोज मुझे बड़े प्यार से दिव्य गुणों के आभूषणों से सजाता है। इसलिए मुझ आत्मा रूपी सजनी के दिल में मेरे सलोने साजन के महिमा के गीत गाते रहें और गुनगुनाते रहें और वही मेरे मन रूपी मंदिर में सदा बसा रहे, उनके ही गीतों के साज मेरे दिल में सदा बसते रहे। और 100% प्यार जो है ना, मैं अपने साजन को सौंप दे चुकी हूँ। 1% भी किसी के साथ शेयर करने का अधिकार मुझे नहीं है, उसमें वफादारी बाबा चाहिए। सच्चे दिल पर साहब राजी, झूठे दिल पर धर्मराज की बाजी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सच्चाई चाहिए, है ना भाई। प्यार दे देना है, ईश्वर और नश्वर ये दो ही चीजें है संसार में, तीसरी चीज नहीं है। ईश्वर नश्वर माना व्यक्ति वैभव, तो हमें ईश्वर को ही प्यार का सौदा करना है, प्यार उनके तरफ ही ट्रांसफर करना है, किसी व्यक्ति वैभव के तरफ हमें शेयर करना ही नहीं है। 8वां संबंध, बाबा मेरा सुप्रीम सर्जन है। कोई भी पुरानी बीमारी है, कोई भी पुराना संस्कार है जिसको परिवर्तन करने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, उसमें सफलता नहीं मिलती, कोई बात नहीं, हमें दिल शिकस्त नहीं बनना है। सर्जन को बोलो आओ इधर और मेरी सर्जरी कर दो, ये बीमारी मुझे नहीं चाहिए। जैसे डॉक्टर को सरेंडर करते हैं हम सर्जरी के लिए, ऐसे मन बुद्धि के द्वारा हमें सर्जन के हवाले कर देना है, सरेंडर हो जाना है, और वो हमारी पुराने संस्कार का ऑपरेशन करते सर्जरी करते और हमें उससे फ्री कर देते हैं, बीमारी कभी नहीं होती है। बाबा कहते हैं मुझे बुलाओ ना, मैं तो तैयार हूं। नेक्स्ट संबंध है, बाबा मेरा रक्षक है। हर कोई चाहता है मेरे सिर पर किसी का हाथ हो बड़े का, मेरा कोई बैकबोन हो, क्योंकि अगर सिर पर किसी का हाथ नहीं होगा तो हम अपने को अकेले अनुभव करते हैं और भय किसी ना किसी प्रकार का मन में रहता है। राजा महाराजा बनने का पहला गुण है निर्भयता। अब खुद ही डरपोक है, क्या राजा ही करेंगे भाई। तो निर्भयता अनुभव करने के लिए बाबा को हमारा अपना बैकबोन अनुभव करना है, और बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, सर्वोच्च रक्षक सदा मेरे साथ में रहता है, मुझे कोई भी बात का भय नहीं है, कोई डर नहीं है, है ना। रास्ते में चल रहे हैं, मिलिट्री पीछे है या पुलिस फोर्स पीछे है, आपको डर नहीं लगेगा, मैं कोई अनर्थ करेगा मेरे पीछे मिलिट्री है मुझे मदद करेगी, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसे सर्वोच्च रक्षक मेरे साथ हैं, ऐसा अनुभव करेंगे तो डर नहीं रहेगा। फिर 10वां संबंध है, बाबा मेरा गाइड है। जब भी दुविधा में हम मूंद जाते हैं, मन हमारा मूंद जाता है, हम अपना निर्णय लेने में समर्थ नहीं होते हैं, बाबा को बुलाओ गाइड के रूप में, बाबा आओ और मुझे गाइडेंस दो, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं मुझे बताओ। बाबा आएंगे और आपको गाइडेंस देंगे, क्योंकि ये दुनिया वाले जो गाइड है वो तो कल का भी नहीं जानते हैं, ये तो गाइड मेरा 5 प्रेजेंट फ्यूचर को जानता है, और दुनिया का जो गाइड है वो तो स्वार्थ से गाइडेंस देगा, यही हमारा निस्वार्थ गाइड देने वाला परफेक्ट गाइड है। इसलिए बाबा को बार बार बुलाना है गाइडेंस देने के लिए। ऐसा अनुभव करने से आगे चलकर अंतिम समय पर बाबा गाइड के रूप में हमें गाइड करते रहेंगे, लिटरली गाइड करेंगे, इधर जाओ इधर नहीं जाओ, ये करो ये नहीं करो, और उसमें हमारा कल्याण समाया होगा। लेकिन अभी से वो संबंध मेरा घनिष्ठ भगवान के साथ मुझे अनुभव करते रहना है, ताकि समय पर हम तुरंत उसको बुलाएंगे। मतलब के समय हम बुलाएंगे तो कैसे आएगा भाई, पहले से तो हमको तैयारी करनी होगी ना। प्राइम मिनिस्टर के पास आप जाएंगे, ये मेरा काम है, वो कहते हैं आप तो पहचानता ही नहीं, मैं तो आपका गुजरात से आए हो ठीक है, लेकिन मैं तो आपको पहचानता ही नहीं हूं, क्या सहयोग दूंगा। तो ऐसे पहले से हमारे संबंध बाबा के साथ होंगे तो संबंध निभाने के लिए अंतिम समय बाबा मदद करेंगे। 11वां संबंध धर्मराज, बाबा को धर्मराज के रूप में जरूर अनुभव करना है। एक का डर जरूर होना चाहिए। परिवार में माँ बाप जो होते हैं ना, वो पहले ही डिसाइड करते हैं तुम बच्चे को प्यार करना, मैं डांटता रहूंगा, नहीं तो बच्चे हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए हमें धर्मराज का डर जरूर होना चाहिए, नहीं तो छोटी मोटी गलती करेंगे तो सजा हमको खानी पड़ेगी। वंडरफुल स्थिति बनाना है भाई, हम यहां किस लिए आए, सुंदर अनुभव करने के लिए आए, वंडरफुल स्थिति बनाने के लिए आए हैं, आए हैं ना। तो वंडरफुल स्थिति कैसे बनाएंगे, वन डर फुल, एक का डर फुल होगा तो आपकी स्थिति वंडरफुल होगी। तो ताली बजाना ना जरा अच्छी तरह से है। बाबा मुझे देख रहे हैं, क्या मैं संकल्प कर रहा हूं ये भी टीवी में अच्छी तरह से बाबा देख रहे हैं। बाबा से मैं छिपा नहीं सकता हूं, कुछ भी नहीं छिपा सकता हूं। ये सोचना, ये सूक्ष्म डर भी हमें पाप कर्म कराने से बचाएगा, हम नहीं करेंगे। बाप बाप की जगह है, लेकिन और भूल करेंगे तो वो धर्मराज भी है। तो कहने का मतलब है सारे दिन भर में स्वामी सखा जो भी संबंध अनुभव करना है बहुत अच्छी तरह से करना है और बाबा को यूज करना है, हमें बाबा को फ्री नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारी रेस योग में है, योग में रेस है। तीन सब्जेक्ट उसको सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन योग माना बुद्धि का तार बाबा के साथ जुटी हुई रहे किसी भी संबंध के द्वारा हो, लेकिन लंबे समय तक होगी तो रेस में मेरा नंबर आगे आएगा, नहीं तो पीछे हटेगा। हमें रेस में विजयी बनना है, आम आम नहीं दौड़ना है, हमें खास दौड़ने वाले घोड़े हैं हम, आत्मा रूपी घोड़े, हमें विजयी बनना है इस रेस में। इसलिए योगाभ्यास में हमारे पास बहुत सुंदर अनुभव होने चाहिए, ठीक है भाई, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे अभी अनुभव हम 10 मिनट के लिए पावरफुल योग का अनुभव करेंगे, ठीक है भाई। तो सब खड़े हो जाएंगे, सिर्फ टीचर बैठ जाए, सब खड़े हो जाओ। अलर्ट होके बैठो, थोड़ा खुला बैठो, एक दो को टच नहीं होना चाहिए शरीर, थोड़ा खुला बैठो और चुस्त होके बैठेंगे। कॉपी पेन डायरी सब हटा दो, सब आजा हाथ पंछी बन के बैठो। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य मोमबत्ती के ऊपर मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जल रही हूँ, जग मग रही हूँ। आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश दिव्यता की रोशनी चारों फैल रही है। मौज आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चारों वासन दिव्य प्रकाश का आभा मंडल अनुभव हो रहा है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हो। भाग्य विधाता ने मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया है। मुझे अपने भाग्य पर नाज है। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति इस देह रूपी चैतन्य मोमबत्ती से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूँ। जहाँ चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मौज आत्मा ज्योति ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। फरिश्तों के बादशाह, प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है, मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबल भी उनके वृकुटी में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा, मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं आत्म ज्योति बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा ओहो, दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है, शांति ही शांति परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा शांति धाम, प्यारा परम धाम। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणेश्वर सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव पिता, मोज आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य चक्षु से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं, मेरे दिल की दुनिया में बाबा ही बाबा बसे हुए हैं। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है, शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्ति शाली किरणों की तेज बरसात मोज आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य श्री पिता से प्रचंड शक्तियां अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति ज्योति सागर महा ज्योति परम ज्योति शिव पिता से महा मिलन का आनंद लूट रही हूँ। शक्तियों से भरपूर आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वापी वाया सूक्ष्मवता साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ, आ रही हूँ। और पुनः इस शरीर रूपी चैतन्य मोमबत्ती के ऊपर मैं आत्म ज्योति विराजमान हो चुके हूँ। मस शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों फैल रही है, फैलती ही जा रही है। वायुमंडल को वाइब्रेट करके शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, अष्ट शक्तियों की चमक मज मस्तक मणि आत्मा से चारो फैलती ही जा रही है। ओम शांति शांति शांति। अगर बाबा के पास आने के बाद ब्रह्मा बाबा खड़े हैं सामने शांति स्तंभ के रूप में, ब्रह्मा बाप समान अचल अडोल स्थिति अगर हमें बनाना है तो उसका सीक्रेट क्या है? हर कोई बनाना चाहता है लेकिन उसके सीक्रेट को जानना जरूरी है। किसी भी बात में ऊंचाइयों को छूना होता है तो उसके पीछे कुछ राज होता है। हर क्षेत्र में लोग ऊंचाइयों को छुए हैं, उन्हों का सीक्रेट है। ऐसे बाबा के पास आइए दीदी, ऐसे बाबा के पास आने के बाद अगर अचल डोल स्थिति बनाना है तो दो बातों पर आपकी बुद्धि की पकड़ होनी चाहिए। आत्म अभिमानी स्थिति पर और समान पर पकड़ होगी तो अचल डोल स्थिति बनाने में सफल होंगे। फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको हलचल में लाए, ये है उसका सीक्रेट। ओम शांति।
तो
दीदी के लिए एक बार तालियां बजाओ भाई, हमारे दीदी के लिए भी बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करती है दीदी, अच्छी तरह से बट्टी को।
ये तो आपकी महानता है, हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं है।
हमारी रूपा दीदी, हमारी इंद्रा दीदी, ताली तो बजाओ भाई।
तो सचमुच आपको बाबा के सर्व संबंधों का रस का अनुभव करा के एक रस स्थिति में ठहराने का अच्छा आपको भरपूर कर दिया है युक्तियां देकर। तो एक हाथ हिलाकर पुनः पुनः भ्राता जी का धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।